ఓం శ్రీ కృష్ణాయ వాసుదేవాయ హరి పరమాత్మనే ప్రణత క్లేశనాయ
స్థిత్ ప్రజ్ఞకే లక్షణ చల్ రే హే సాత్ భూమికాయే హోతీ హే स्वेच्छा सुविचारणा तनुमानसा सत्वापत्ति असंशक्ति और पदार्था भावनी और तुरिया सात अवस्थाएं। उनमें से जो सातवीं अवस्था है उसका वर्णन कल हुआ, वो तुरिया अवस्था है, जहां पर आदमी अपने से ही पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है। जब आप अपने से संतुष्ट हो, देखो, दूसरे से सुख लेने के लिए साधनों की आवश्यकता पड़ती है। रूप से सुख लेना है तो आंख की आवश्यकता पड़ती है, कान शब्द से सुख लेना है तो कान की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जिस समय अपने से सुख लेना है उस समय आपको साधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जनक ने कहा अष्टावक्र से, जो शांति आदमी को चाहिए मैं उस शांति को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे अनुष्ठान करता हूं, लेकिन वो शांति मुझे प्राप्त नहीं हो रही है। धर्म का अनुष्ठान, कर्म का अनुष्ठान, आप हैरान हो जाओगे। अष्टावक्र उठा करके देखो, अष्टावक्र कहते हैं तू अनुष्ठान कर रहा है इसीलिए तेरे को शांति नहीं मिल रही है। बड़ा मुश्किल है, इसका कारण क्या है? मैंने बहुत सोचा इस पे, भाष्य देखा, इसका कारण यही है एक कि साधन हमेशा हमको हमसे दूर ले जाते हैं। साधन किसके लिए चाहिए? यदि आपको कहीं भी आपको जाना है तो आपको किसी न किसी साधन की जरूरत है, लेकिन यदि आपको अपने में आना है तो आपको किस साधन की जरूरत है? किस साधन की जरूरत है? बल्कि साधन छोड़ने की जरूरत है। यदि आप नीचे गाड़ी 24 घंटे आपकी खड़ी रहेगी तो ड्राइवर बोलेगा चलो बाबूजी चलो 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 चलो, तो आपको भी परेशानी हो जाएगी, क्योंकि वो साधन आपको यहां से ले जाने के लिए है। तो क्या सारे साधन व्यर्थ हैं? साधनों की सार्थकता है आदमी को अंतर्मुखी बनाने तक। आदमी अंतर्मुखी हो गया, साधनों का काम पूरा हो गया। साधन मैंने उपाय, उपाय शब्द का अर्थ शास्त्रों में किया है, उपादाय अनंतरम हेयम इति उपायम। जैसे आप घर से गाड़ी में बैठ के आते हैं, गाड़ी आपकी भले ही 10 करोड़ की है, प्रेमपुरी के गेट में पहुंचे आप, उपादाय अनंतरम, गेट के अंदर आए, आपने गाड़ी का दरवाजा खोला, आप बाहर निकले। यदि उसी से चिपके रहे तो वापस भी ले जाएगी। आज ऐसा नहीं कि साधक नहीं है, ऐसा नहीं है कि प्रज्ञावान नहीं है। आप ऐसा मत समझना हम किसी की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन बड़े से बड़ा साधन और भजन करने वाला व्यक्ति भी बाद में कहीं ना कहीं ऐश्वर्य के चक्कर में उलझ जाता है। बस और क्या, रामदेव भी वही करता है जो हिंदुस्तान लीवर करता है, और क्या करता है। वो गलत करता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। कहने का मतलब क्या है कि साधनों की एक क्षमता थी, उसने आपका चित्त शुद्ध कर दिया, आपको यश दे दिया, प्रतिष्ठा दे दी, कीर्ति दे दी। अब उस यश, प्रतिष्ठा और कीर्ति का आप उपयोग क्या कर रहे हैं, आपके ऊपर है। साधना है वो आपको ईश्वर की अनुभूति भी करा सकती है और ऐश्वर्य के जाल में उलझा भी सकती है। वो उपयोगी होगा, वो गलत होगा, ऐसा नहीं कहता हूं मैं। लेकिन ऐश्वर्य की प्राप्ति के मूल में राग द्वेष हमेशा विद्यमान रहता है। राग द्वेष की निवृत्ति के बगैर ये संभव नहीं है। इसलिए ये जो प्रजाहाति वाली जो बात आई, ये तुरीय स्थिति है। एक और उसके लिए दृष्टांत दे दिया, सिद्धांत बता दिया कि आत्मनेव आत्मना तुष्ट। ये बात बोलने का तात्पर्य क्या है, मैं भी कल सोच रहा था, बात को बोलने का तात्पर्य क्या है। बड़ी जोर दे के बात कही और उसके बाद कहा गया स्थित प्रज्ञ सद उच्यते। इसका एक ही तात्पर्य है कि अब आपको साधनों की जरूरत नहीं है। यदि आप अपने से अपने में यदि आपको आना है, अपने में यदि आपको पहुंचना है, तो आपको किसी और साधन की जरूरत नहीं। अच्छा, अब चलिए आगे का 56 नंबर का श्लोक बहुत अच्छा है। तो तुरीय बताया ना, उसके बाद है पदार्था भावनी, छठी वो जो आ गया उसमें। अब उसका लक्षण ये कर रहे हैं, जरा ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा। दुखेशु अनुद्विग्न मनः सुखेशु विगत स्प्रिया वीतराग भय क्रोध स्थिर मुनिरुच्यते। कृष्ण कहते हैं अर्जुन पास में खड़ा है, मुनि है नहीं, मुनि बनने की इच्छा रखता है, मुनि के बारे में जानने की ख्वाहिश है उसकी, दुनिया है क्या चीज सुख और दुख के सिवा है। सुख और दुख का अर्थ होता है अनुकूलता और प्रतिकूलता। अनुकूल वेदनीयम सुखम, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। वेदन बोलते हैं ज्ञान के लिए। जब आपको अपनी प्रतिकूलता का ज्ञान होने लगता है तो जीवन में दुख महसूस होने लगता है। अनुकूलता का ज्ञान होने लगता है तो आपको सुख महसूस होने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं दुखेशु बिना बुलाए, ये जी जिंदगी में कोई चीज आती है तो वो दुख है। कभी बुलाना पड़ता है, शायद हटाने की कोशिश हम पहले से करना शुरू कर देते हैं। और शास्त्रों में एक बहुत अच्छी बात लिखी है, सबसे बड़ा दुख क्या है, जन्म दुखम और जरा दुखम, बीच में जरा को मत छोड़ो, ये बुढ़ापा बड़ा दुख है। असली में बुढ़ापा क्यों दुख है, जैसे कोई आदमी कुछ चीजें आपको गिफ्ट में दे और फिर वो अपनी गिफ्ट वापस मांगे तो बड़ा बुरा लगता है। ऐसे ही है ये सब, परमात्मा दांत वापस मांगता है तो वेदांती बन जाते हैं। एक महात्मा रहते थे घाटकोपर में, बड़े अच्छे, स्वामी त्रिवेणीपुर जी महाराज, मैंने कभी आपको बताया, एक माई उनके पास में आई, मैं भी बैठा हुआ था, ज्ञानज्ञ की बात थी, तो सिंधी माई थी, उसने कहा महाराज जब ऐसी बिचारी चलती थी, चला नहीं जाता, अभी बहुत तकलीफ होती है, तो बड़े अच्छा उनका बहुत अच्छा स्वभाव था त्रिवेणीपुर जी महाराज का, बहुत अच्छा स्वभाव, यहां भी आए हुए हैं, बड़े अच्छा, बहुत हरिभाई जो है शायद किसी के साथ नीचे तक नहीं जाते होंगे, उनके साथ नंगे पांव तक नीचे तक जाते थे। तो कहा माई जब तेरी शादी हुई कितने साल हो गए, बोले महाराज 50-60 साल हो गए होंगे शादी। तो जब शादी हुई तो उस समय फिर गहने पहनते हैं ना, एक यहां भी चूड़ी पहनते हैं नाक में, पहले पुराने जमाने की बात, अभी तो सब पहले से ही जो है वो ऐसे ही हो गए, मतलब अब क्या शब्द, दो शब्द में बोल नहीं सकता। एक लगता है जो दुल्हन होती है वो गहने पहनती है, तो जब गहने पहन के सामने खड़ी होती है तो आपको लगता है ये दुल्हन है, तो दुल्हन अच्छी लगती है गहनों में, बोले हां अच्छी तो लगती है, दुल्हन देखती है तो बहुत अच्छे उसके गहने वहने सब अच्छे, बोले ऐसे ही मैया ये बुढ़ापे के गहने हैं सब जो है ना, ये कमर में दर्द होना, आंखों से नहीं दिखना, बुढ़ापे का भी मजा इसी से ही है, किससे, तो कभी के गहने सुख देते हैं और कभी के गहने दुखेशु अनुद्विग्न मना, ये गहने हमें शायद अनचाहे पहनने ही पड़ते हैं। जीवन में जब दुख आता है आदमी उद्विग्न हो जाता है, तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पे भाष्यकार ने लिखा दुख प्राप्तो मनो यस्य स अयम अनुद्विग्नः, आपके जीवन में है कुछ यदि ऐसा हो रहा है जो आप नहीं चाहते, वही आपके साथ में हो रहा है, आप विचार करना जरूर कि आपने कुछ ऐसा कर लिया जो आपको नहीं करना चाहिए था। जैसे बच्चा पास सोना चाहता है, स्कूल गए ही नहीं, हमारी जिंदगी में जो हम नहीं चाहते वो यदि हमारे साथ में घटित होता है, उसका कारण एक महत्वपूर्ण ये है कि हमने कुछ ऐसा कर लिया जो हमें नहीं करना चाहिए था। मैंने कभी आपको इशारों में बताया था, मैं दानव ने जो हस्तिनापुर का राज्य का राजमहल बनाया था, उस राजमहल में महारानी द्रौपदी जब ऊपर खड़ी होकर के बहुत जोर से हंसती है, आप विचार करो, जो व्यक्ति दूसरे के पतन पे हंसता है वो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने रोने की व्यवस्था बना देता है। और महाभारत में उसके बाद वो औरत दोबारा कभी हंसी नहीं। एक पवित्र कार्य है। देखो आप कहीं पाप करो, नहीं करना नहीं, ऐसे मैं नहीं बोलो, महाराज ऐसे बोलता पाप करो, पाप करो। इस आश्रम में आओगे पाप खत्म हो जाएंगे, भजन करोगे, प्रेमपुरी जी महाराज के सामने बैठोगे पाप है। यहां यदि पाप किया तो वज्र लेपो भविष्यति। हाँ, ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि सब जगह का किया गया पाप काशी में खत्म हो जाता है, काशी में किया गया पाप पंचकोशी में खत्म होता है, और पंचकोशी में कृतम पापम वज्र लेपो भविष्यति। सब जगह एक जैसे नहीं रहा जाता, सब जगह एक जैसे नहीं बोला जाता। इसका फिर कोई प्रतिकार नहीं है, भोगे बगैर वज्र लेपो भविष्यति। भोग के सिवाय कोई और दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए बता रहे हैं दुखेषु अनुद्विग्न मनः। द्रौपदी के चित्त में उदारता थी, महाभारत में जगह पे आता, महाभारत में नहीं भागवत में भी है ये, आप लोगों ने यदि ध्यान से सुना होगा, जब अश्वत्थामा को अर्जुन पकड़ के लाता है, कृष्ण से पूछा क्या करना चाहिए, यहां पे कृष्ण ने कहा मार देना चाहिए इसको। द्रौपदी से कहा, देखो मैंने कहा ना आपको, कृष्ण जैसा डिप्लोमेट आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। कृष्ण कहते हैं कि मार देना चाहिए इसको, लेकिन ये अपराधी द्रौपदी का है। मैं भी कभी कभी पढ़ता हूं, सोचता हूं, कृष्ण का यदि वो द्रौपदी का अपराधी है तो पांडवों का भी तो अपराधी है, पुत्र अकेले द्रौपदी को तो नहीं थे। लेकिन कृष्ण के बुद्धि में स्त्री का कितना महत्व है, यदि इस बात को आपको समझना है तो भागवत का प्रथम स्कंद देखो आप। भगवान कहते हैं इस बार मेरा मत तो पूछ लिया आपने, लेकिन नहीं, ये सजा देने का जो अधिकार है ये किसका है। और द्रौपदी ने वहां पे शायद भागवत की सबसे अच्छी बात यही होगी, द्रौपदी ने कहा कभी कोई पुरुष किसी स्त्री के हृदय को नहीं समझ सकता। वो साधक नहीं है, जो दुखों के समय दूसरे के उपकार को भूल जाए। वहां द्रौपदी जी वे कहती हैं, तुमको मालूम है ये अश्वत्थामा को तुम गौर से देखो। सुना है आप लोगों ने, क्या क्या गौर से देख, क्या देखो है? याद नहीं है, गौर से देखो इसको, यदि तुम इसको गौर से देखोगे तो तुमको इसमें द्रोणाचार्य नजर आएगा। ऐसे दुख के समय में इतना विवेक बनाए रखना, इसका नाम है दुखेसु अनुद्विग्न मनः। दुखेसु अनुद्विग्न मन का इससे बड़ा कोई दृष्टांत तो दुनिया में हो नहीं सकता मेरी दृष्टि में। कृष्ण द्रौपदी कहती है कोई पुरुष कभी स्त्री का हृदय नहीं समझ सकता। मेरे दिल में जो तड़फन हो रही है, मेरे जीवन में जो कष्ट हो रहा है, मैं कभी नहीं चाहूंगी कि ये अश्वत्थामा की मां को ऐसा कष्ट हो। मां भूत कृपी ऐसा लिखा है, मां भूत कृपी भागवत जी का मूल श्लोक है। वो कृपाचार्य की बहन थी, कभी किसी स्त्री को ऐसा कष्ट सहना पड़े ऐसा मैं कभी नहीं चाहूंगी। जितने पांडव थे वो तो सब द्रौपदी का मुंह देखते ही रहे। भीम था तुम्हारे जैसे बहुत सूक्ष्म बुद्धि वाला, उसने कहा इस माई का दिमाग खराब हो गया, अभी पागल खाने जाने लायक हो गई। अभी देखो तो कृष्ण क्या बोल रही है, ये धर्म व्रतांबर जो भगवान श्री कृष्ण है उन्होंने कहा द्रौपदी ही सही कह रही है। इसका नाम है दुखेसु अनुद्विग्न मनः। जबरदस्त भयंकर दुख के अंदर भी उसके चित्त में उसने कहा एक और सब बताया उन्होंने वहां पे, एक आपको याद होगा क्योंकि तुम तो भागवत आजकल दूसरे प्रकार की सुनते हो ना, भागवत के सिवाय सब कुछ सुनते हो उसमें, ऐसी भागवत आजकल है। बताया मालूम है, द्रोणाचार्य के उपकार को याद करो तो तुम्हारी आंखें उनके सामने कभी ऊपर नहीं हो सकती। एक लव्य का अंगूठा कटवा दिया, इतना छोटा सा दुख आया और सारे उपकार भूल गए। ये तब संभव होता है जब हम दुख में बहुत ज्यादा उद्विग्न हो जाते हैं। इसलिए स्थित प्रज्ञ के लिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं दुखेसु अनुद्विग्न मनः। एक हो गया, चलो आगे कह रहे हैं सुखेसु विगतस प्रिया। सुख के साथ में हम हमेशा चिपके रहना चाहते हैं। सुख है क्या चीज, सुख किसे बोलते हैं? आदमी सोचता है सुख के दिन कभी मिटे नहीं। राम ने कहा मैंने इस राज्य की कामना कभी अपने लिए नहीं की है, प्रत्येक व्यक्ति की सुख की व्याख्या अलग अलग होती है। देखो प्रेम परमात्मा से आत्मा से सभी करते हैं। मैंने कभी आपको एक दृष्टांत दिया था, एक दृष्टांत आता है, एक बार महाराज दशरथ ने भरत है ये सब इन लोगों को क्रीड़ा करने के लिए ना भेजा, क्रीड़ा भी करनी चाहिए, खेल भी खेलना चाहिए, शरीर का भी ख्याल रखना चाहिए। तो कबड्डी उस समय कबड्डी होती थी, कबड्डी देखा है ना आप लोगों ने, आज भी भारत शायद कबड्डी में ही स्वर्ण पदक जीतता है और दूसरे में तो जीतता नहीं। तो कहा दो टीम बना लो आप, एक राम की बना लो और एक भरत की बना लो। तो पहले तो ऐसा बोला था कि राम की बना लो और एक लक्ष्मण की बना लो। लक्ष्मण ने गुरुजी का गला पकड़ लिया सीधा। उसने कहा तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि हम भगवान राम के विपरीत खड़े हो जाएंगे, खेल में भी हम भगवान के विपरीत खड़े नहीं हो सकते। इसको शरणागति में गिनाया है। आनुकूल्यस्य संकल्प प्रातिकूल्य वर्जनम, छह प्रकार की शरणागति शास्त्रों में गिनाई है। किसी भी परिस्थिति में कभी कुछ भी हो जाए, हम परमात्मा के हमेशा अनुकूल बन करके ही रहेंगे। आनुकूलस्य संकल्पम और प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, और प्रतिकूल कभी होंगे नहीं। तो गुरुजी का गला पकड़ लिया चेले ने। उन्होंने कहा भाई छोड़ गला मेरा, तू राम जी की पार्टी में खड़ा हो जा। भरत जी से कहा, भरत जी चुप खड़े रहे। उन्होंने कहा जैसी भगवान की इच्छा है। सुख के प्रति स्प्रेया न होना भी कहीं न कहीं इस समर्पण का लक्षण है। यही समर्पण है। हम जीवन में सुख को पकड़े रहना चाहते हैं। इसलिए कृष्ण कहते हैं दुख तुम्हें उद्विग्न न कर पाए, जैसे द्रौपदी को नहीं कर पाया, और सुख जब तुम्हारे जीवन में आए तो पगला मत जाओ। क्या तुम्हारे पास है क्या यार? कुछ नहीं है। सुख जैसी कुछ चीज है ही नहीं। मैं आप विचार करो ना, भारत में सुख की बात तो अलग है, सुविधाएं भी पर्याप्त नहीं है। अभी वो ओबामा गया ना यहां से, तो इंटरनेट पे आया कि भारत में इतने घंटे ओबामा रहे तो उनकी 6 घंटे की उम्र कम हो गई। इतना पोल्यूशन इस देश में है, और लल्लू घूमते हैं, वो सोचते हैं कि हमारे जैसे बड़ा दुनिया में कोई है। किस चीज से बड़े हो तुम? लैपटॉप बाहर बना उसको वापरते हो, फोन बाहर का बना हुआ है उसको वापरते हो, सब कुछ तो बाहर का वापरते हो। सुख हमने समझा ही नहीं कभी। तो जीवन में हमेशा अनुकूलता की अपेक्षा मत रखो। यहां सुख का मतलब ब्रह्म सुख से नहीं है, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। अनुकूलता वाली बात है। जिंदगी है, कोई अनुकूल होता है कोई प्रतिकूल होता है। कर्मों का हिसाब किताब है, कर्मों का लेन देन है। लेकिन बेटा ये ख्याल रखना कि तेरा किया तेरे को ही भोगना है बस। इसलिए जीवन में दुख आए, जन्म दुखम जरा दुखम, दुख में दुखेशु अनुद्विग्न मनः सुखेशु विगत स्प्रिया, सुख के प्रति बहुत लगाव नहीं। क्योंकि कभी आप थोड़ा पढ़िए, कृष्ण का चरित्र पढ़ते हैं, ये जो लिखते हैं यह पूर्णानंद मग्नोप्यनुगत मनसाम, कैसा वैभव के बीच में रहकर के भी वो ध्यान के लिए समय निकाल लेते थे, कैसी ये जो भौतिक पदार्थ हैं, इन भौतिक पदार्थों की गुलामी का नाम सुख नहीं है। इनके प्रति क्या स्प्रिया करनी है, इसलिए जो स्थित प्रज्ञ पुरुष होता है वो ये कभी नहीं चाहता कि सुख हमेशा बना ही रहे और दुख हमेशा चला जाए, क्योंकि सुख और दुख न हमारी इच्छा से आते हैं और न हमारी इच्छा से जाते हैं। पहली पंक्ति हो गई, अब दूसरी पंक्ति लो आप थोड़ा सा। वीत राग भय क्रोध, श्री कृष्ण कह रहे हैं जैसे सपने में किसी ने आपकी सोने की चेन छीन ली, क्रोध आता है। जगने के बाद वो क्रोध कहां चला जाता है पता ही नहीं है, आता है क्रोध। सपने में कोई चीज मिली उसके प्रति लगाव हो जाता है, जगते हैं तो वो चीज होती नहीं है। भगवान वशिष्ठ श्री रामचंद्र जी को कहते हैं दीर्घ स्वप्न मिमम पश्य, हे राम एक लंबा सपना चल रहा है। और आप नहीं हम भी ये महसूस करते हैं हकीकत में सपना है। बड़ा गजब का सपना है, इसलिए चित्त में विचार होना चाहिए। राग वीत शब्द को हटा दो, पहले राग लगाओ, राग और भय। राग शब्द का अर्थ क्या है मालूम है आपको? राग का, हां भगवान पतंजलि योग दर्शन में लिखते हैं सुखानुसाई राग, जहां से सुख मिलने लगता है वहां से आदमी को लगाव हो जाता है। हनुमान जी महाराज को बोला रामचंद्र जी ने, कुछ मांगो ना यार, इतने भिकमंगे मेरे पास आते हैं, मैं भी थक गया भिखारियों को देख देख के। क्या बोलते हैं मालूम है आपको? नान्या स्प्रिया रघुपते हृदय स्मदीये, भक्तिम प्रयक्ष रघुपुंगव निर्भराम में। नहीं, साधना की पराकाष्ठा यही है कि ऐश्वर्य में सुख नहीं, सुख ईश्वर में है। ऐश्वर्य सुविधा है, और हमेशा इस विवेक को बनाए रखना। देखो तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं, एक होता है त्याग, एक होता है प्रेम, और एक होती है सेवा। त्याग प्रेम और सेवा, आप त्याग किससे करते हैं, त्याग किसके लिए करते हैं? हम त्याग दूसरों के लिए करते हैं, दूसरा कम से कम वस्तु का उपयोग करे, और सेवा अपनी चाहते हैं। त्याग अपने लिए होना चाहिए, त्याग जब आप अपने लिए करते हो तो जीवन में जीवन को सुखी बनाने का एक महत्वपूर्ण उपाय है कि आदमी की आवश्यकताएं कम से कम, जितनी आपकी आवश्यकताएं कम होंगी, मैं आपको बता रहा हूं, मैं एक जगह गया था, कोई ले गया मेरे को, बहुत बड़ा मॉल था वो, कहां था वो बताऊंगा नहीं आपको, सोचोगे महाराज भी ऐसी जगह जाते हैं। तो मेरे साथ में 2-3 आदमी थे, सिंगापुर की बात है, तो उसने मेरे को कहा महाराज जो चीज आपको खरीदनी हो खरीदो। आप गया तो हमारे को तो कुछ पसंद आया ही नहीं, बड़ी मुश्किल से एक जूता पसंद आया मेरे को, लाल एकदम महात्मा के कलर का था, इसलिए ले लिया मैंने उसको। अच्छा लिया तो मेरे को ठीक लगा, चलो जूता अच्छा मिल गया लाल लाल कलर का। उस आदमी ने लिया जूता, हम नीचे आए, फिर जिसके घर में ठहरे थे वहां गए तो देखा तो जूता वहां दूसरा। बोला क्यों? बोले महाराज जी हमने नाप आपका पता लग गया, और वो $30 का था, ये $100 का है। बोलो हमने काम को नहीं पहनना है जूता, $100 का और $30 का क्या मतलब है? अरे पांव पे चुभे है, आजकल की माइयां चलती हैं, वो सैंडल की हिल इतनी लंबी लंबी होती है कि कभी गाड़ी आके पीछे से धक्का मार दे तो फिर क्या होगा पता नहीं, भगवान जानेंगे। न धोती संभलती, न बाल संभलते, और अपने साथ में ऐसी चीजों को लेकर के चलो जो तुमसे संभलता ही नहीं है, तो तुम्हारे जीवन में दुख के सिवा और क्या होने वाला है? हमेशा साथ में उन चीजों को लेकर चलो जिन चीजों को तुम संभाल सकते हो, संवार सकते हो, जो न संभले न संवरे, ऐसी चीजों को क्या ले जाना है साथ में? वस्तु उपयोगी भी तो होनी चाहिए, वस्तु कीमती है इसलिए महत्वपूर्ण नहीं होती, वस्तु उपयोगी है इसलिए महत्वपूर्ण होती है। वस्तु का महत्व तब बढ़ता है जब वस्तु की उपयोगिता होती है। आपने कभी पैदल यात्रा नहीं की? हमने यात्रा की है पैदल, गंगोत्री जमुनोत्री 1978 में पैदल यात्रा। महाराज पैसे की कोई इज्जत नहीं है, जब पैदल चलते इतना कोई आटा यदि दे दे उस आटे की बड़ी कीमत है, वो नोट को क्या चूल्हे पे गर्म करेंगे? राग जो सुख है, एक उसके प्रति कामना है, बस उसकी निवृत्ति हो जाना। तो राग की निवृत्ति कैसे होगी उसके लिए आपको एक उपाय बता देता हूं। आप ये समझ लीजिए, पतंजलि लिखते हैं सुखानुसाई राग नहीं, जगत में सुख किसी व्यक्ति और वस्तु से नहीं मिल सकता। मैंने एक आप निश्चय नहीं कर सकते कि जिसका लड़का है वो सुखी है, अथवा जिसका लड़का नहीं है वो सुखी नहीं है, जिसकी पत्नी है, मैंने कोई व्यक्ति किसी संबंध से आप सुख की निश्चित परिभाषा नहीं कर सकते। तो फिर क्या है? तो व्यक्ति और वस्तु जितने हैं ये सुख के निमित्त हैं, सुख दुख के तो कारण हमारे कर्म हैं। कारण मालूम पड़ा ना? कारण में और निमित्त में मालूम पड़ता होगा। कारण है आप विद्यार्थी ने साल भर चिंतन किया, मनन किया, अध्ययन किया, ये कारण है। और मास्टर जी ने कॉपी अच्छी तरह चेकिंग किया, फर्स्ट क्लास के नंबर दे दिए, तो वो निमित्त बन गए। कौन? और अविवेक जब होता है तो हम निमित्त को ही कारण समझ लेते हैं। और जब साधक कभी निमित्त को कारण समझता है उस समय फिर क्रियाओं में विकृति आ जाती है, उसमें लिखा है वाल्मीकि रामायण में भी श्लोक आता है, अध्यात्म रामायण में भी श्लोक आता है, सुखस्य दुखस्य न कोऽपि दाता परो ददाति कुबुद्धिरेषा अहम् करोमीति व्रताभिमाना स्वकत कर्म सूत्रे ग्रथिते हि लोका। हमने तो अपने जीवन में जो किया सब सुखी होने के लिए किया, दुखी होने के लिए तो किया नहीं। लेकिन जीवन में हर जगह से दुख मिलते हैं, इसका मतलब वो निमित्त मात्र हैं, इसके मूल में हमारा कर्म कारण है। तो वीत ये राग शब्द का अर्थ हो गया। भय, आगे भय भगवान बता रहे हैं, भय क्या चीज है देख लो, वो उपनिषद के अंदर वेद के अंदर लिखा है, द्वितीयाद्वय भयं भवति, श्रुति कह रही है। भय हमेशा दूसरे से होता है। शेर को देख के सब डरते हैं लेकिन शेर कभी अपने को देख के नहीं डरता, देखा आपने कभी? जो चोर डकैत होते हैं ना, वो अपना चेहरा बड़ा खूंखार बनाते हैं, देखते हैं कि सामने वाला देखते ही डर के गिर पड़े, लेकिन जब वो अपना खूंखार चेहरा देखता है तो उसको बड़ी खुशी होती है, क्योंकि अपने से डर नहीं होता, डर हमेशा दूसरे से होता है। इसलिए श्रुति कहती है द्वितीयाद् वै भयं भवति, हमेशा दूसरे से भय होता है। और इसका उपाय क्या है तो बता दिया,
विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं,
दूसरा कोई है ही नहीं, सामने वाला व्यक्ति तो दर्पण है। आपने सुना है युधिष्ठिर से कहा कि कोई बुरा आदमी ढूंढ के ले आओ, वापस आ गए, बोले कोई बुरा आदमी नहीं मिला, बोले नहीं मिला, दुर्योधन नहीं मिले थे रास्ते में, अरे बोले महाभारत में महाराज युधिष्ठिर ने, आप आश्चर्य मानेंगे, दुर्योधन के लिए कहीं दुर्योधन शब्द का प्रयोग नहीं किया, सुयोधन शब्द का प्रयोग किया। नजरें बदलती हैं तो नजारे बदल जाते हैं, हवाओं के रुख बदलते हैं तो कश्तियों के किनारे बदल जाते हैं। युधिष्ठिर की नजरें बदली हुई हैं, इसलिए दुर्योधन जैसा नजारा भी उसको अच्छा लगता है। दुर्योधन से कहा कोई अच्छा आदमी ढूंढ के ले आओ, वापस आया कोई मिला नहीं अच्छा, बोला युधिष्ठिर जी मिले थे कहीं रास्ते में, बोले कोई अच्छा आदमी, उसके जैसे बुरा तो कोई है नहीं, उसके जैसे कपटी तो कोई है नहीं, इसका कारण क्या है? दुर्योधन के लिए युधिष्ठिर दर्पण है, और जब दुर्योधन युधिष्ठिर के सामने खड़ा होता है तो युधिष्ठिर के अंदर भी एक दुर्योधन देख लेता है, और युधिष्ठिर के लिए दुर्योधन दर्पण है। जब वो दुर्योधन को देखते हैं तो दुर्योधन में भी उनको एक युधिष्ठिर दिखाई देता है। भय हमेशा दूसरे से होता है, ज्ञानी के जीवन में भय नहीं होता, क्योंकि वो धीरे 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 सब जगह अपने को देखने लगता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मई पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सचमे न प्रणश्यति। धीरे धीरे अपने को सब जगह देखने लगता है, इसका नाम है राग भी नहीं होता, भय भी नहीं, क्रोध। क्रोध जीवन में बड़ी खतरनाक चीज है। देखो, संपत्ति होती है ना, संपत्ति, संपत्ति। भाष्यकारों ने एक दृष्टांत दिया है, यथा लोके राजानम। मैं भी कभी आपको बताता रहता हूं, जैसे लोक में राजा होता है। अभी ओबामा यहां आए थे, कितनी उनकी रिस्पेक्ट, दुनिया के सारे मीडिया उनके पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि राजा की जो इज्जत होती है वो उसकी शक्ति और संपत्ति से होती है। किसकी? राजा की शक्ति और संपत्ति। आज उसके पास में इतनी शक्ति है, इतनी संपत्ति है, दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है वो, सबसे सुंदर चीज खाते हैं वो लोग। तुम तो सबसे सड़ी मैगी खाते हो। एक को मैंने पूछा, बोले मैं बड़ी भगवान की भक्त है। मैंने कहा मैगी खाई कभी? कहां? बोले खाई। मैंने कहा देख क्या है इसे, ये भगवान परम वैष्णव। राजा की कीमत उसकी शक्ति और संपत्ति से है। ऐसे ही साधक की जो कीमत होती है वो भी उसकी संपत्ति से होती है। तो साधक की संपत्ति क्या है? श्रम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा और समाधान, सड़ संपत्ति है। अब वो आप, मैं भी कभी कभी तुलना करता रहता हूं, ऐसे बैठे बैठे खुरापात करता रहता हूं। वो एयरफोर्स वन जो प्लेन है ओबामा का, वो परमाणु से नहीं टूट सकता, इससे नहीं हो सकता, उससे नहीं हो सकता, उससे नहीं हो सकता। इतनी सुरक्षा किसकी? प्लेन की। वो उसकी संपत्ति है। ऐसे ही साधक की संपत्ति है सब, जिसने अपने मन को नियंत्रित कर रखा है, जिसने अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके रखा है, उस आदमी को दुखी करने का कोई उपाय नहीं है। तुम्हें तो जब चाहो दुखी कर दें, दो मिनट में हम दो मिनट में खुशी करते हैं। लेकिन बुद्ध के पास में, शंकराचार्य के पास में सड़ संपत्ति है। ऐसी संपत्ति है उनके पास विपत्ति नहीं आने देती। हाँ, विपत्ति पुरुष संपत्ति है, इसलिए क्रोध नहीं आता। जिस व्यक्ति, ये क्रोध जो है ना, आदमी की सड़ संपत्ति को नष्ट करता है। हाँ, श्रम का अर्थ होता है मनोनिग्रह, और जब क्रोध आएगा ना आपको, क्रोध तो 9 दिन का मौन होगा तो भी ऐसी गाली दोगे कि पूछो मत। हाँ, बड़े शांति से बैठे भजन करते हो और गुस्सा आ गया तो डंडा मार दिया, फेंक दिया, दम, इंद्रियों का निग्रह खत्म हो गया। तितिक्षा है बुद्ध के जीवन में, तितिक्षा थी, जबरदस्त तितिक्षा है। तो ये जो संपत्ति जिन व्यक्तियों के पास में है, ये क्रोध का अर्थी होता है, जो आपके सम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा और समाधान को नष्ट कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं स्थित प्रज्ञ तदुच्यते। ऐसी सड़ संपत्ति संपन्न व्यक्ति जो है, बाहर से आने वाली विपत्तियां जिस व्यक्ति को छू नहीं सकती, तभी तो बुद्ध के सामने सांप खड़ा है, बुद्ध समाधि में बैठे हुए हैं। शंकराचार्य के सामने खाली खप्पर पड़ा है तो भी ऐसा लगता है कि पेट भरा हुआ है। क्योंकि सम दम पास में है। सुखदेव के ऊपर कोई पत्थर फेंकता है तो भी ऐसी मुस्कुराहट है जैसा किसी ने गले में हीरों का हार डाल दिया हो। पत्थर फेंकने के बावजूद चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट जैसे किसी ने हीरों का हार डाल दिया हो, इसका अर्थ क्या है? इसी का अर्थ है स्थित प्रज्ञ तदुच्यते। इस प्रकार से कितने श्लोक हो गए मालूम है? 3 श्लोक पूरे हो गए अभी। चलो